તારીખ 7/9/1992 પૂજ્ય ભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા ગ્વાલિયરમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 24 મૂળ કેસેટમાં અવાજ ધીમો છે.
આલોચના કરના એ હમારા કામ નહીં હૈ. ઇસમે એસે પ્રશ્ન કા શંકા સમાધાન નહીં ચલેગા જો આપકો ખ્યાલમાં રખને કા. સદગુરુ કી પરિભાષા ક્યા હૈ? सदगुरु की परिभाषा वो है कि जो निर्ग्रंथ होते हैं और जो अंतर्बाह्य परिग्रह रहित होते हैं, सब छठा सातवां गुण स्थान में विराजमान होते हैं. क्षण में छठा, क्षण में सातवां गुण स्थान जिसको आता हो, ऐसे महामुनि को सद्गुरु हम कहते हैं. ये प्रश्न हो सकता है कि ज्ञानी को भी गुरु कहने में आता है. ये प्रश्न हो सकता है शिक्षा गुरु को भी गुरु कहने में आता है. तो ये एक शिष्टाचार का विषय होता है, ये विनय का विषय होता है. लेकिन हमारे ज्ञान में, हमारे ध्यान में वो बात साफ होनी चाहिए कि गुरु पद तो छठा सातवां गुण स्थान पहले होता ही नहीं है. कह सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ करके बोलने में कोई दोष नहीं है. बिना समझे तो सदगुरु को भी सदगुरु कहे तो इसका कोई वास्ता नहीं रहता. तो ये बात है. क्या विदेश सम्यक दृष्टि सीधा इस काल में मनुष्य से मनुष्य पर्याय में आ सकता है? क्या नहीं आ सकता? मनुष्य सम्यक दृष्टि, मनुष्य मनुष्य का आयु पूरा करके नियम से देवायु में जाता है. और देव सम्यक दृष्टि होता है, वो अपना आयु पूरा करके मनुष्य में आता है. उनको दो गति होती है. लेकिन देव मनुष्य होता है, मनुष्य देव होता है, इसके पहले कोई नहीं होता. इतना हो सकता है कि किसी ने मिथ्यात्व अवस्था में मनुष्य आयु का बंद किया हो या नरक आयु का बंद किया हो या कुछ भी किया हो, तो वो सम्यक दर्शन के बाद भी वो वायु का बंद, जो गति का बंद है, वो फिरता नहीं है. इसलिए ऐसा कभी बन सकता है. बाकी सम्यक दर्शन के बाद तो मनुष्य अवश्य देव में ही जाता है. जी वो घूमने जाएगा. और एक बात हो गई, बाकी के जो प्रश्न है सब व्यक्तिगत है. व्यक्तिगत प्रश्न अगर पूछना ही हो, मुझे अकेले मिल सकते हैं पूछने वाले, लेकिन सभा में इसकी चर्चा परिचर्चा करनी तो ठीक नहीं है. अपने को ये शोभा नहीं देती. आज किसी एक की चर्चा होगी, कल दूसरी की हो जाएगी, फिर तीसरी की हो जाएगी, फिर तत्व चर्चा ही बंद हो जाएगी. ऐसी ही चर्चा चलती रहेगी. इसलिए इस विषय में हम अपना जो प्रिंसिपल शिस्त है, डिसिप्लिन है, उसको नहीं छोड़े. क्या है हमारे लिए? ऐसा नहीं है कि देशना लब्धि मिले और संस्कार होवे, दो बात अलग अलग है. दो बात एक नहीं है. जिसमें आत्म स्वभाव का संस्कार डलता है वो चीज अलग है, वो देशना लब्धि नहीं है. देशना लब्धि प्रायोग लब्धि आदि चारों लब्धियों अनंत बार जीव को मिली है, मिल चुकी है, इसलिए इसका काल में कोई सवाल नहीं पैदा होता। वो तो मामूली बात है, थोड़ी असर जीव पर आती है फिर ये असर चली जाती है विरुद्ध परिणाम होने के कारण से। संस्कार जो पड़ते हैं वो ऐसी चीज है कि वो कभी निर्मूल नहीं होती, तो वो बात दूसरी है। संस्कार डलने की बात दूसरी है, देशना लब्धि वाली बात जो चार लब्धि में देशना लब्धि है वो बात बिल्कुल अलग है, दोनों एक चीज नहीं है, ऐसी बात है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, आगम में कोई समय की मर्यादा हमारे पढ़ने में तो नहीं आई है, वो बात को हमारे पढ़ने में समझने में अभी तक तो नहीं आई है कि देशना लब्धि का असर कितना काल तक रह सकता है, वो समझ में नहीं आई है, क्योंकि वो तो इतना मामूली परिणाम है कि कोई अंतर्मुहूर्त के बाद कितना भी विरुद्ध परिणाम कर देवे तो देशना लब्धि वाली बात खत्म हो जाए, प्रायोग लब्धि वाली बात खत्म हो जाए, चारों लब्धियाँ खत्म हो जाए, ऐसी बात हो जाती है। तो चार लब्धि तो वो टोडल मर्जी साहब लिखते हैं मोक्षमार्ग प्रकाशक में कि चार लब्धि तो अनंत बार हो चुकी है, लेकिन इससे जीव का कोई कल्याण हो जाए ऐसी बात नहीं है, इतनी बात है। मैंने व्यवहार की बहुत गौणता की है, इसका मतलब ये है कि उनको उन्होंने अपने स्वरूप की, निश्चयी स्वरूप की उतनी प्रधानता की है, और उतना प्रधान है भी वो कि इससे आगे, इसके आगे किसी का मूल्य नहीं है। जैसे अपन नियमसार को देखें तो नियमसार की 50वीं गाथा में भगवान कुंद स्वामी क्या कहते हैं कि मेरा जो परम पारिणामिक भाव स्वरूप परमात्मा है, उस परमात्मा की भावना में आते हुए वो क्या कहते हैं कि चारों भाव हैं, वो परद्रव्य है, प्रभाव है और है ही है। क्या कहा? तो चारों भाव में तो क्षायिक भाव भी आ जाता है, और क्षायिक भाव में यथाख्यात चारित्र है, क्षायिक सम्यक दर्शन है, केवल ज्ञान की क्षायिक पर्याय है, परमानंद की क्षायिक पर्याय है, पुरुषार्थ की भी संपूर्ण अनंत वीर्य की पर्याय है, वो पर्याय तो प्राप्त भी नहीं हुई है, और छठे सातवें गुण स्थान में वो लिख रहे हैं, ये पर्याय तो 13वें गुण स्थान में आएगी, और लिखते हैं कि परद्रव्यम परभावम हेयम इति। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो परम परिणामी भाव है वो उतना मान है, वो उतना मान है कि इसके आगे हम किसी को कुछ नहीं देखते, उतना महत्व, उतनी भावना उसकी रहती है कि इसके आगे एक समय की पूर्ण पर्याय भी अपरम भाव है, परम भाव नहीं है, परम परिणामिक भाव ही परम भाव है, कोई पर्याय परम भाव नहीं है, सब अपरम भाव है। यही तो गुरुदेव का प्रवचन है, 68 गाथा परमात्मा प्रकाश की, 65 गाथा परमात्मा प्रकाश की, वैसे तो प्रवचन आए हैं, हाँ, दृष्टि प्रकाश के दूसरे खंड में वो बात लिया है, और निहा और नियमसार में भी वो बात आई है। उपवास किया है, सही बात है, हम क्या नहीं से देखे, हमारे पास तो व्यवहार में इसका विषय को देखने के लिए नजर ही कहाँ है, ऐसा कहते थे। हमारे पास तो क्या हो गया है, एक ही नहीं है, दूसरा नहीं ही नहीं है हमारे पास, ऐसे कहते हैं। तो ये बात है बहुत स्वरूप की मस्ती में से निकली हुई, ऐसी बात है। जैसे कि इसका दृष्टांत ले सकते हैं कि जैसे महाभारत की कथा में अर्जुन की परीक्षा का विषय आया था, वो मत्स्य वेद का प्रसंग आता है, मछली को ऊपर की आँख में तीर लगाने का था और ये मछली को रखे ऊपर एक बड़े खंभे के ऊपर और उसके सामने नहीं देखने का था, वो खंभा रखा पानी में और पानी में इसका प्रतिबिंब को देख करके मछली की आँख में तीर लगाने का था। तो इसे गुरु द्रोणाचार्य पूछते हैं कि भैया अर्जुन तुमको ये पानी दिखता है ने, तो कि नहीं दिखता है, क्योंकि पानी में दिखने का था, पानी दिखता है कि नहीं दिखता है, पानी में खंभे का प्रतिबिंब पड़ता है तो कि नहीं दिखता है, उस पर मछली रखी है कि नहीं दिखती है, फिर क्या दिखता है तुझे, वो मुझे तो एक मछली की आंख दिखती है, तो कि छोड़ तीर छोड़ दे तू तेरा, अब ये बराबर तीर लगने वाला है। ऐसी एक आराधना की, परमात्म पद की आराधना की ऐसी मस्ती आती है ज्ञानियों को साधक दशा में, तो ऐसी बातें निकलती है। और इसमें जिसको अध्यात्म रस होता है उसमें उसको बहुत रस आता है, ऐसे विषय में बहुत सारा रस आता है, क्योंकि ये स्वरूप का रस है, आत्म रस है, चैतन्य रस है। समयसार और कारण परमात्मा में अंतर है क्या? अच्छा, वही समयसार का। अच्छा, कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा, वो तो क्या है कि कभी पर्याय के साथ भी द्रव्य की भावना होती है और कभी पर्याय रहित भी द्रव्य की भावना होती है, दोनों प्रकार से भाई जाती है। जब परिणाम में सम्यक्ता आ गई, समीचीनता आ गई, फिर कोई भाषा का अपराध नहीं गिना जाता। क्या? क्यों कि ज्ञान में स्वरूप आता है, तो आत्मदर्शन जिसके ज्ञान में है, प्रत्यक्ष है, तो उसकी कोई भाषा की पाबंदी नहीं है। को इसकी भाषा में हम दोष निकाले कि वहाँ ऐसा कैसे बोलते हैं, वहाँ ऐसे कैसे बोलते हैं, क्यों कि आखिर में जिसको इस वचन से जो आत्मरस आता है वो तो आत्मरस आएगा ही आएगा। जिसको वस्तु स्वरूप का विज्ञान का पता नहीं, ऐसे जीव को कारण कार्य से वस्तु का स्वरूप दर्शाया जाता है, लेकिन वो तो अन्वेषण काल में है। ये नए चक्र की 268 नंबर की गाथा है, जो बड़ा नई चक्र है उसकी, कि तच्च अन्वेषण काले युक्ति मग्गेण, युक्ति मार्ग से वस्तु के स्वरूप को जाना जाता है अन्वेषण काल में। नो आराधन समय, आराधना समय को में ऐसा नहीं होता। क्यों? नो आराधन समय पचखो अणवो जम्मा, क्योंकि वहाँ आत्मा प्रत्यक्ष है। जब आत्मा प्रत्यक्ष है तो वहाँ कोई कारण कार्य का लॉजिक की जरूरत नहीं है, आवश्यकता की जरूरत नहीं है कि हम इस कारण से इस बात कर रहे हैं, वहाँ उस कारण से इस बात को कर रहे हैं, वो कोई जरूरत नहीं है। आराधना में तो वस्तु प्रत्यक्ष है, वहाँ कोई युक्ति मार्ग की, आगम की, अनुमान की, किसी भी प्रमाण की जरूरत नहीं, तर्क प्रमाण की, अनुमान प्रमाण की, आगम प्रमाण की, नए प्रमाण की, श्रुत प्रमाण की कोई जरूरत नहीं। क्यों कि ये सब प्रमाणों में से ये आगम के विषय है, इस आगम प्रमाण से भी अनुभव प्रमाण बलवान प्रमाण है, ऐसा आगम कहता है। क्या? आगम भी यही कहता है कि अनुभव है वो सबसे बलवान प्रमाण होता है, इससे आगे किसी दूसरे प्रमाणों के देने की कोई आवश्यकता नहीं रहती।
हाँ ठीक है, सबको जानता है, एक को जानता
है, सबको एक को जाने बिना सबको जान ही नहीं सकते, ऐसी बात है। सब है वो व्यवहार का विषय है और एक है वो निश्चय का विषय है। तो कोई ये कहेंगे कि जब निश्चय मुख्य होता है तो व्यवहार गौण हो जाता है, लेकिन ये नहीं कह सकते या कोई आगम ऐसा कभी नहीं कहता कि जब व्यवहार मुख्य होता है तो निश्चय गौण हो जाता है, ऐसा कहीं आगम में एक दफे भी नहीं आएगा। और हजार दफे वो बात आ जाएगी कि निश्चय मुख्य है और व्यवहार गौण है। इसलिए कहने वाले का अभिप्राय साफ है कि वो किसकी मुख्यता चाहते हैं। तो जो एक आत्मा को जानता है, एकम जानही सो सर्वम जानही, वो आचारंग का प्रधान सूत्र है। और जो एक को जानेगा वो सबको जानेगा, लेकिन एक को जाने बिना कोई सबको जानने को जाएगा, कोशिश करेगा, तो बंधन में पड़ेगा, ये हालत हो जाएगी।
दूसरी कथा में सबको जानता है वही एक को जानता।
हाँ वो प्रवचन शर्मा था,
दोनों
प्रवचन शर्मा था, लेकिन वो एक को जानने पूर्वक की बात है, बिना एक को जाने वो बात नहीं है। ये अपेक्षा है माँ, उतने अपेक्षा लेकर रखना है, सीधा नहीं लेना है ऐसा, क्योंकि ये बात ज्ञानियों ने कही है। श्रीमद् जी के वचन में वो बात आती है कि अगर कोई आत्मा को जाने बिना जगत के स्वरूप को जानने को जाएगा तो बंधन में पड़ने वाला है, वो बंधेगा, उसका निर्वाण या छुटकारा नहीं होगा, ये बात है। मुख्य गुण काय में होता है, एक ज्ञान गुण श्रुत ज्ञान की पर्याय में ही मुख्य गुण होता है। जो श्रद्धा है उसमें मुख्य गुण नहीं होता, श्रद्धा को तो एक ही विषय होता है, जो अपनी आत्मा होता है तो सम्यक होती है वो। अगर आत्मा को छोड़कर पर विषय है, भेद नहीं पाड़ते, राग देह निमित्त उसका भेद नहीं पाड़ते, श्रद्धा तो स्वय और पर की श्रद्धा मिथ्या श्रद्धा कहलाएगी, स्वयं की श्रद्धा सम्यक दर्शन कहलाएगी। ये श्रद्धा के विषय में पूरा निचोड़ है। ज्ञान के विषय में क्या होता है कि अनेक विषय को जानने वाला ज्ञान जिससे अपना प्रयोजन है उसको मुख्य कर लेता है, बाकी सब गौण कर लेता है। ये ज्ञान की प्रवृत्ति होती है हमेशा हमेशा। छद्मस्त जीवों को जब तक छद्मस्त अवस्था है तब तक केवल ज्ञान पूर्व, ज्ञान में मुख्य गुण होगा होगा और होगा ही। अब क्या श्रद्धा और ज्ञान में कौन सा निमित्त नैमित्तिक संबंध से रिलेशन है, क्या संबंध है कि जिसकी श्रद्धा होगी उसकी ही ज्ञान में मुख्यता होगी। देखिए कि अभी एक मुमुक्षु जीव की श्रद्धा सम्यक श्रद्धा नहीं है, मिथ्या श्रद्धा है, तो ज्ञान में अपने स्वरूप को मुख्य करने के लिए चिंतन करता है तो बेकार जाता है, मुख्यता हो नहीं पाती। जब मुख्यता हो जाएगी तो श्रद्धा को सलटना पड़ेगा। तो मुख्यता के साथ श्रद्धा रहती है, इसलिए ज्ञान की प्रधानता से ज्ञान को साधन कह करके श्रद्धा को, ज्ञान पूर्वक श्रद्धा को कराई है। प्रयोजन बात है। तो इसलिए ज्ञान में स्वरूप का आश्रय कब होगा कि जब वेदन से अपने अस्तित्व को ग्रहण करेगा तब। क्या आत्मज्ञान किसे कहते हैं? लक्षण से, गुण से, मैंने स्वभाव से और वेदन से आत्मा को जो जानता है उसे आत्मज्ञान कहते हैं। ये आत्मज्ञान की आध्यात्मिक तौर से परिभाषा है। तो इस डेफिनेशन में तीन बात लिया है कि एक तो स्वभाव ज्ञान में आना चाहिए, लक्षण से आना चाहिए और उसका वेदन होना चाहिए। लक्षण से, गुण से और स्वभाव से जिसने आत्मा को जाना वो आत्मज्ञानी है। सिर्फ शास्त्रों के माध्यम से जानकारी कर ले कि आत्मा का द्रव्य क्षेत्र काल भाव वो है, द्रव्य गुण पर्याय ऐसा है, उत्पाद वे ध्रुव ऐसा है, गुण गुणे भेद ऐसा है, कोई आत्मज्ञान नहीं होता। ऐसे आत्मज्ञान कभी नहीं होता। ये तो एक इन्फॉर्मेशन मिल गई कि आत्मा कैसा है। तो इन्फॉर्मेटिव नॉलेज इज नॉट राइट नॉलेज। यहाँ कोई माहिती मिलती है, हमें जानकारी मिल जाती है किताबों से या सुनने से, इसलिए जानकारी मिलना वो ज्ञान नहीं है। ये तो वो ज्ञान ही नहीं है। यहाँ तो अनुभव ज्ञान को ही, वेदन ज्ञान को अनुभव ज्ञान क्यों ही ज्ञान कहते हैं आत्मज्ञान में? तो अनुभव में वेदन आता है और वेदन में क्या होता है कि देखिए वहाँ तो कौन सा शब्द पड़ा है इन्वर्टेड कॉमा में, जो सुबह का जो स्वाध्याय चलता था उसमें क्या बात चलती थी कि जो अनुभूति है सो ही मैं हूँ, ऐसा आत्मज्ञान, उससे प्राप्त श्रद्धा, ऐसे लेंगे फिर। तो ऐसा आत्मज्ञान में क्या, कौन सा फ्रेज लिया कि जो अनुभूति है सो मैं हूँ। तो वेदन पूर्वक आश्रय किया, विचार में आश्रय नहीं किया, वेदन पूर्वक आश्रय किया, जब ही आत्मज्ञान हुआ उसमें आत्म आश्रय भी आता है, आत्म अनुभव भी आता है और अनुभव करना वो ज्ञान की पर्याय है। ऐसी बात है जी।
ये नहीं,
बोलने में तो दोनों बोल सकते हैं, लेकिन जब कारण कार्य की जब परंपरा है तो ये 17-18 का था तो दिगंबर ग्रंथ की बात ही बात है। ये जो भगवान कुंडकुंद स्वामी का समय सार है वो तो दिगंबर आगम है हमारा। और जब उन्होंने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है, जब विधि का विषय अपने प्रकरण में उठाया तो ज्ञान पूर्वक श्रद्धान लिया, वहाँ श्रद्धान पूर्वक ज्ञान नहीं लिया। तो प्रैक्टिकल साइड से ये बात हमें आचार्य महाराज की समझ में आती है कि श्रद्धान करना मैंने प्रतीत करना, विश्वास करना, दर्शन जो है उसका दो अर्थ है। दर्शन का दो अर्थ है साहब। एक तो दर्शन का अर्थ है देखना, दर्शन उपयोग, और एक दर्शन का अर्थ है श्रद्धान करना। ऐसे दो अर्थ होता है, है? है? हाँ, तो क्या है कि दर्शन का अर्थ शास्त्र में दो आता, दो जगह दर्शन शब्द का प्रयोग है। दर्शन उपयोग जिसको सामान्य चैतन्य कहते हैं वो दर्शन उपयोग है, उसको भी दर्शन कहते हैं। मैं ज्ञान दर्शन मैं आत्मा हूँ, तो वहाँ ज्ञान और दर्शन में श्रद्धा नहीं लेना है, वहाँ सामान्य और विशेष ऐसा लेना है चैतन्य को। और जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग आता है तो वहाँ श्रद्धा ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, वहाँ दर्शन उपयोग नहीं लेना है। ऐसे जहाँ सम्यक दर्शन की चर्चा चलती है वहाँ श्रद्धा का अर्थ बैठता है, और जहाँ दर्शन उपयोग की चर्चा चलती है और ज्ञान उपयोग की चर्चा चलती है, तो उपयोग दो प्रकार के होते हैं, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। सामान्य जो चैतन्य का उपयोग है वो दर्शन उपयोग है, और विशेष जो चैतन्य का उपयोग है वो ज्ञानोपयोग है। ऐसे विवेकशायन सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक काल में होता है, दो काल इसका कभी नहीं होता, एक ही समय में वो पैदा हो जाता है। हाँ, दोनों एक साथ होता है, लेकिन जो सम्यक दर्शन है वो प्रतीति रूप भाव है। तो प्रतीति रूप भाव बिना ज्ञान प्रतीति किसकी आएगी, आती आ सकती है क्या? प्रैक्टिक प्रैक्टिक जी तो ये दर्शन उपयोग वाली बात हो गई, इधर यो हमारा श्रद्धान का विषय नहीं चलता है, वो दर्शन उपयोग का विषय। तो दर्शन का दो अर्थ होता है, जहाँ जो प्रकरण चलता है उसी के अनुसार हमें समझना पड़ेगा। जब अर्थ एक शब्द का अर्थ दो होता है तो अपने प्रकरण अनुसार अर्थ करेंगे, ऐसी बात है। भाषा में तो कई जगह ऐसे होती है कि एक शब्द का दो अर्थ होता है, तो जब जहाँ जो अर्थ होता है वहीं करेंगे। जैसे हम पड़ोसी को चाचा कहते हैं या मामा कहते हैं, कुछ भी कह देते हैं, वास्तव में वो नहीं है, तो फिर भी व्यवहार है हमारा ऐसा बोलने का, ऐसा कहेंगे। अच्छा अच्छा, अब क्या है, मैं थोड़ा और खुलासा करूं इस विषय में कि मोक्ष मार्ग में मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन की प्रधानता बहुत है। क्यों? क्यों कि श्रद्धा है इसका परिणमने का स्वभाव, इस गुण का, इस शक्ति का परिणमन करने का स्वभाव पूर्ण शुद्ध रूप से परिणमन करने का स्वभाव है। मैंने पूरी ताकत से वो अपने स्वरूप की श्रद्धा प्रतीति करता है, जबकि ज्ञान चारित्र आनंद पुरुषार्थ ये जो गुण हैं वो पार्टली सिद्ध होते हैं पार्टली असिद्ध होते हैं। तो क्या है कि श्रद्धा का विषय पूरा का पूरा आत्मा है, ज्ञान का विषय आत्मा भी है और पर भी है, चारित्र का विषय में राग भी है और वितरागता भी है, पुरुषार्थ में थोड़ा अपने राग में भी लगता है आत्मा में भी लगता है। तो दूसरे दूसरे गुणों के परिणमन में दो विभाग हो जाने से इनकी ताकत बढ़ जाती है, बढ़ती है, दो जगह पर ताकत लगती है उनकी गुण की, और श्रद्धा की ताकत एक ही विषय पर लगती है अपने परमात्मा स्वरूप में, तो उसमें बल बहुत आता है। इसके साथ जो बल पैदा होता है तो कहते हैं ज्ञानी कि साधक जो है वो तो श्रद्धान के बल से आगे बढ़ता है, ऊपर ऊपर के गुण स्थान में जाता है श्रद्धान के बल से, ऐसा कहा जाता है। वहाँ ज्ञान की प्रधानता नहीं की, लेकिन जिनको श्रद्धा नहीं हुई है, जो मुमुक्षु है, उनके पास तो श्रद्धा पूरी की पूरी उल्टी पड़ी है, वो साधन कैसे बनेगी? इनके पास कोई साधन खुला है तो एक ज्ञानी है जिसमें वो विवेक करता है, जिसमें स्वभाव खुला है, तो वही साधन बनता है जो श्रद्धा को मिथ्या में से पलटवा कर सलड़ देता है स्वानुभव के काल में। तो सम्यक दर्शन के पहले साधन क्या हो सकता है, ये दूसरा प्रकरण है, और सम्यक दर्शन होने के बाद किसके बल से आगे बढ़ता है वो दूसरी बात हो गई, दो बात अलग अलग हो जाती है। बहुत टेक्निकल साइड है ये, अलग अलग परिस्थिति में कौन से गुण कैसे कैसे काम करते हैं, इसका जो विज्ञान है हमारे यहाँ, ये बहुत टेक्निकल साइड है, उसको पूरा बराबर नहीं समझें तो भाषा में कहीं ज्ञान की प्रधानता आएगी, शास्त्रों में कहीं स्वतः की प्रधानता आएगी। तो बोलने वाले को तो दोष नहीं लगता है क्योंकि उनको तो बराबर स्वरूप दर्शन है, लेकिन जिसको स्वरूप दर्शन नहीं है वो चक्कर में पड़ जाएंगे कि अरे एक आचार्य तो ज्ञान की प्रधानता करता है समय सार में 17-18 गाथा में, और वही समय सार में या दूसरे ग्रंथ में श्रद्धा की प्रधानता कही है उमा स्वामी ने। अब क्या समझे कि हम दो आचार्य को सामने आमने सामने भिड़ा देंगे क्या, रख देंगे क्या? ऐसा नहीं होता। अनंत ज्ञानियों का एक मत होता है, उन लोगों को स्वरूप दर्शन है, वो कहाँ कैसा बोलना किस ढंग से बोलना वो अच्छी तरह जानता है, क्या कौन सा प्रकरण चलता है कहाँ कौन सा प्रकरण चलता है। तो इन लोगों को दोष नहीं आता क्योंकि वो तो बहुत स्वरूप दर्शन पूर्वक बराबर समझ कर बोलते हैं। तो जो मुमुक्षु है उनको तो अपने को प्रयोजन में कौन सा साधन है वो पहला समझना पड़ेगा, क्योंकि पूरी श्रद्धा उल्टी है, मिथ्या श्रद्धा मैंने पूरी उल्टी श्रद्धा, उसमें अधूरापन नहीं होता होना चाहिए। तो फिर आप प्रश्न करेंगे क्यों कि सूक्ष्म की मोटे रूप से बात है, सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो व्यसन अलग चीज है, प्रवृत्ति अलग चीज है। जैसे कि हमारे पुराण में जो युधिष्ठिर थे वो चरम शरीरी थे और शत्रुंजय जैसे वो सिद्धालय में पधारे, युधिष्ठिर भीम और अर्जुन तीनों भाई थे, शत्रुंजय जैसे मोक्ष में पधारे हैं। तो वो जुआ खेले थे और थे क्या क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, और ये बात ओपन है सारे महाभारत में। तो जो वो वनवास में कैसे गए, तो जुआ खेलने के बाद तो गए वो अपने राज को तो हार गए थे वो, तो सम्यक दृष्टि होते हुए जुआ कैसे खेला, तो उनको व्यसन नहीं था क्या? उनको व्यसन खेलना प्रासंगिक कोई बात हो जाना वो आचरण अलग है, व्यसन होना वो अलग बात है। तो उतना जो नहीं जानते उनको तर्क आ जाएगा कि ये सब तो व्यसन वाली बात टूट जाती है, सिद्धांत टूटता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा दूसरा दृष्टांत लेवे कि सम्यक दृष्टि के आचार में वो अन्याय अनीति किसी से नहीं करते, हाँ सज्जन भी नहीं करते, सम्यक दृष्टि कैसे करेंगे? अच्छा तो हम ये तर्क लगाएंगे कि जो रामचंद्र जी थे उसने सीता जी को क्यों भेज दिया जंगल में, जब वो श्रीलंका से उनको वापस ले आए तो खुद ही सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई, तो कोई परिशुद्ध मालूम हुई, ऐसे शंका नहीं थी, लेकिन समाज में कोई शंका नहीं करे इसलिए एक प्रयोग हुआ कि वो अग्नि परीक्षा में से पसार हुई थी, तो सारी समाज ने स्वीकार किया कि ये सती है, उसमें कोई शक नहीं है। फिर भी लोगों की तो लोग ये जो है बड़े शैतान होते हैं लोगों में, तो क्या है कि उल्टी सुलटी बातें लोग करने लगे। रामचंद्र जी उन्हें पद्म पुराण में आते हैं कि कुछ समय तक वो राजकाज से अलग होते थे, अपने निवृत्ति काल में अयोध्या के बाहर अपने जो उद्यान हैं उसमें जो महल बनवाए हैं वहाँ ठहर जाते, एकांत में साधना करते, ज्ञान ध्यान में रहते ग्रस्त अवस्था में भी। तो वैसे कोई प्रसंग था कि वो अयोध्या में नहीं थे, अयोध्या में इनकी अनुपस्थिति थी, और ये बवंडर बहुत चला सीता जी वाला, तो जिनको जो समाज के जो पंच थे उसमें पंचायत इकट्ठी हुई, बड़े बड़े लोगों की महाजन लोग इकट्ठे हुए, तो ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आता, ये कैसा दुष्म काल है, दुष्म काल चल रहा है ना, अंधाउ सर्पिणी, ऐसे महात्मा हैं हमारे रामचंद्र जी, हमारे सीता बड़े पवित्र हैं, ये क्या समाज में चल रहा है, लोग तो बहुत टेंशन में आ गए क्या करें। अगर हम रामचंद्र जी को इस बात की जानकारी नहीं देंगे तो शायद भविष्य में उनको डांटेंगे कि तुम लोग ने हमने बताया नहीं हमको, और कहें तो हम किस मुंह से कहें, हमको तो कोई शंका है ही नहीं, किस मुंह से हम कहें। तो वो लोग बड़े टेंशन में आ गए। फिर आखिर में ये डिसीशन लिया गया, आता है पद्म पुराण, जिसने पढ़ा होगा उसमें मालूम होगा। तो वो लोग गए रामचंद्र जी के पास, जो अयोध्या के बाहर जो भी उद्यान में वो ठहरते थे, वहाँ गए रामचंद्र जी से मिले। तो जब ये मीटिंग रूम में बैठे थे, हाँ, तो उनके भी बड़े बड़े रूम होते हैं, उसमें एक मीटिंग रूम होता है जैसे कंसल्टेशन का रूम होता है अपने यहाँ में से। तो रामचंद्र जी पधारे, लोग महाजन लोग थे, मौन हो गए। कौन बोले, कैसे बोले, रामचंद्र जी की पत्नी की बात रामचंद्र जी को किस मुंह से कौन करे, तो कोई बोल नहीं पाते थे। रामचंद्र जी तो बहुत विचक्षण पुरुष थे, पुरुषोत्तम पुरुष जिसको बोला है। तो क्या बात है, आप लोग आ रहे हैं, मिलने को आए हैं, कुछ कहने को आए हैं, बोल नहीं रहे, बता नहीं रहे, बात क्या है, फिर भी कौन बोले, कोई बोल ही नहीं सकते थे। तो रामचंद्र जी समझ गए कि कोई बात ऐसी है मेरे विषय में जो ये लोग मुझे नहीं कह सकते। तो उन्होंने अपनी ओर से इजाजत दे दी कि कोई भी बात हो, कैसे भी बात हो, मुझे कोई बुरा लगने वाला नहीं है, आप बिल्कुल खुला मन से बात करिए हमारे साथ। जब आप आए ही हैं, बुद्धिमान आदमी हैं, बड़े आदमी हैं, महाजन लोग हैं, कोई गंभीर समस्या तो होगी ही, वरना तो इधर अयोध्या छोड़ करके मुझे डिस्टर्ब करने को आते ही नहीं। जब मैं इधर शांति से आया हूँ तो मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब तो करते ही नहीं, कोई ऐसी बात नहीं होती, तो बात क्या है बता दीजिए। तो फिर उन्होंने बताया कि लोग में कुछ ऐसी चर्चा चल रही है जो हमें बहुत अनुचित लगती है, और यदि ये कोई कहावत रह जाएगी तो ये राम राज्य को एक दाग लग जाएगा, एक कलंक रह जाएगा आपके सिर पर, हमारे से बर्दाश्त नहीं होता है ये बात को, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए आए हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, सीता जी को भेज दिया जंगल में, और वो इस हालत में कि जब वो गर्भवती थी। तो किसी ने प्रश्न उठाए अपने, आता है ना दूरदृष्टि प्रकाश में, कि कहाँ का न्याय है, ये रामचंद्र जी इतने न्यायवान राजनीतिज्ञ थे कि आज हजारों साल के बाद भी राम राज्य ऐसा नाम रह गया। क्या राम राज्य क्या था वो आज तो बोलो इस लोग समझते नहीं है, लेकिन नाम रह गया। मुनि सुव्रतनाथ भगवान 20वें तीर्थंकर के समकालीन थे वो, इतने हजारों साल के बाद ये राम राज्य, तो उसके न्याय नीति बहुत परिपूर्ण थी। लेकिन सीता जी के स्थान पर कोई आर्ग्यूमेंट करता है कि इनका क्या दोष था, इनको इतनी सजा क्यों, ये कहाँ का न्याय है, क्या धर्मी उतना अन्याय करता है क्या। तो धर्मी अन्याय नहीं करते हैं, फिर भी प्रसंग वसात कभी किसी को अन्याय हो जाता है, करना नहीं चाहते हैं फिर भी हो जाता है, तो भी उतनी इनकी महानता के आगे ये दोष बड़ा दोष गिनने में नहीं आता। तो ये तुलसीदास जी ने चौपाई में गाया कि समरथ को नहीं दोष गुसाई, क्या गाया कि समरथ को नहीं दोष गुसाई, गुसाई थे ना श्यामलाल जी तो जानते हैं सब। तो ये समर्थ पुरुष को इतना जो आचरण का दोष है वो नहीं लगता। तो सम्यक दृष्टि है, वो समर्थ पुरुष होते हैं, उनके आचार के दोष हम देखेंगे तो हम भूले पड़ जाएंगे। किसी भी हालत में चारित्र के कितने भी झंझावात हुए, लक्ष्मण जी मर गए, 6 महीना तक मुर्दा को कांध में लेकर फिरे हैं, हमारा पद्म पुराण बोलता है, और उसको खिलाते थे, चेष्टा करते थे खिलाने की, स्नान करवाते थे, तो कोई क्या समझे ये रामचंद्र जी पुरुषोत्तम पुरुष है या कोई पागल है। हाँ आजकल तो पागल ही गिने उनको। अच्छा जब सीता जी का हरण हो गया रोने लग गए इतने महापुरुष। रोते थे वो, रोते थे उतना ही बात नहीं, तो पशु को पक्षी को पेड़ को वेल को पूछते थे रोते रोते, मेरी सीता को देखी कहीं, तूने मेरी सीता को कहीं देखी, इधर से गुजरी क्या। तो इधर तो कोई जवान आदमी ऐसा कोई रोने लगे तो उनको क्या बोलेगा, हमारे गुजराती में उसको बहु घेला कहता है, गानपन पागलपन, बहू को पीछे पागल हो गया वो। रामचंद्र जी क्षायिक सम्यक दृष्टि चरम शरीरी बहुतेर कलाओं के जानकार पुरुषोत्तम पुरुष और पत्नी के पीछे रोने लगे जैसे कोई नई शादी हो और रोने लग जाए। तो ऐसे इनके चरित्र जो होते हैं महापुरुष के को समझने में बहुत अक्ल को ठिकाने पे रखनी पड़ती है, कलेजा को बहुत साबुत रखना पड़ता है। क्या कि इसके ऐसे चारित्र के झंझावात में भी पुराण लिखने वाले महामुनि थे। कौन थे? ऐसे पुराण लिखने वाले महामुनि थे, हमने अपने दिगंबर मुनि थे, रविशरण आचार्य ने लिखा है, आचार्य थे रविशरण आचार्य। ऐसे कोई इनके दोष बताने के लिए लिख रहे हैं क्या, या गुण बताने के लिए लिख रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में भी अपने श्रद्धा ज्ञान में से आत्मा को नहीं छोड़ा, मिथ्या दृष्टि नहीं हुए, ऐसी परिस्थिति में सम्यक दृष्टि रहे। तो ये दिखाने को हेतु उन्होंने ये सब चरित्र लिखे हैं। लेकिन हमारे श्रद्धा ज्ञान को समझने की तो ताकत नहीं है, योग्यता नहीं हो, और हम देखे सिर्फ आचरण को, और फिर हम अपराधी होकर के ऐसे महापुरुष का जजमेंट करेंगे कि ऐसा होना चाहिए था वैसा नहीं होने चाहिए था। तो क्या इतनी अक्ल वो महापुरुष में नहीं थी क्या? तो ऐसे हैं कि अपने स्थान को संभालना पड़ता है। कोई खून करने वाला अपराधी कोर्ट के कचहरी के कठोरे में खड़े खड़े सुप्रीम कोर्ट के जज का जजमेंट लिखने को जाता है, वो कितना अनुचित है। तो वो तो खुद तो क्रिमिनल माइंडेड है। क्रिमिनल माइंडेड आदमी सुप्रीम कोर्ट का जज का जजमेंट वो लिखने को बात करता है, वो कितना अनुचित है। वैसे मिथ्या दृष्टि मुमुक्षुओं को तो जो बात करनी है उसमें कहीं स्वयं को नुकसान नहीं हो जाए, इसकी सावधानी पहले रखनी है।
इसी प्रसंग में शंका होती है, राजा चरण छाए तो उसके पत्र ने उसको देश के किंगडम बंद कर दिया था। तो फिर जैसे उसका पुत्र आया तो मैंने के लिए हाथ उठाते,
हाँ खुदकुशी कर रहे थे। हाँ कर सकता है, हो सकता है, इस वक्त भी श्रद्धा ज्ञान से वो च्युत नहीं हुए हैं। ये देखने दिखाने वो चाहते हैं कि ऐसे मामलों में गुजरते हुए भी वो श्रद्धा ज्ञान से च्युत नहीं होते। अगर सूक्ष्म दृष्टि होते ना तो हम पंडित लोग आरोप कर देते कि इस वक्त च्युत हो गए होंगे, मिथ्या दृष्टि हो गए होंगे। लेकिन अच्छी बात है कि वो क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, इसलिए पंडितों को कोई विचार करने की जरूरत नहीं रहती। पंडित लोग सम्यक दर्शन के भेद जानते हैं, उपशम क्षोपशम और क्षायक। तो ये लोग जो है उस वक्त उनको मिथ्या दृष्टि ठहरा देते हैं। लेकिन हमारा शास्त्र ये बोलता है कि ये क्षायिक सम्यक दृष्टि थे और आगामी 24 के आदिनाथ भगवान है, पहले तीर्थंकर होने वाले हैं, ये बात है। मुमुक्षुओं के लिए सबसे पहले दर्शन मोह कैसे नुकसान करता है और दर्शन मोह के अनुभाग को शक्ति को तोड़ करके कैसे आत्मलाभ हो सकता है, इस विषय को मुख्य करना। दूसरे विषय को मुख्य मत करो, वरना मूल बात जो है वो हाथ में से छूट जाएगी। तो उस बात पर हमने जो आर्टिकल लिखा है प्रयोजन सिद्धि का, वही कारण से लिखा है कि हमारे यहाँ रोजाना जो नित्य स्वाध्याय चलते हैं उसमें दर्शन मोह का प्रश्न बहुत आता था। हर बात में हमारे सुनने वाले मुख भाई लोग हैं, वो पूछ लेते हैं आप ये बात कर रहे हैं लेकिन अभी दर्शन मोह का यहाँ कैसा परिणमन चलता है, क्या ताल्लुक है, किस स्टेज में है, कैसे हैं वैसे हैं। तो उनके बहुत प्रकार से समाधान शंका चल रही थी, फिर सबको सब बात याद तो रह रहे नहीं। तो फिर ये आग्रह हुआ कि दर्शन मोह के विषय पर एक आर्टिकल लिखा जाए कि मुमुक्षु जीव को, तत्वज्ञान के अभ्यास करने वाले मुमुक्षु जीव को, पूजा भक्ति दया दान करने वाले मुमुक्षु जीव को दर्शन मोह की वृद्धि कहीं बाह्य साधन करते हुए भी होती है या नहीं होती है, तो नहीं होती है, होती है तो कब होती है, कैसे होती है। तो इनके जो भेद प्रभेद हैं वो सारे इस आर्टिकल में लिखे हैं, इसी कारण से लिखे हैं। ये किताब इधर उपलब्ध है, हिंदी में भी है, जिसको जरूरत हो